आपकी जो रिसर्च है वो मुख्य रूप से जेंडर डिसआर्ममेंट, जो निरस्त्रीकरण है, हथियारों पर नियंत्रण है, आर्म्स कंट्रोल पर, और जो उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन पर आपका फोकस है। थोड़ा उस रिसर्च के बारे में बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम इतने सारे इश्यूज हैं और ये एक साथ आ रहे हैं, एक इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं, तो हमें क्यों इन पर ध्यान देना चाहिए?
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल के लिए, क्योंकि हम इतना देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आजकल सिर्फ डिसआर्ममेंट वाली फील्ड में ही नहीं या सिर्फ गवर्नेंस वाली फील्ड में ही नहीं, सबके एक्सेस के अंदर हैं। सब उनको एक्सेस कर सकते हैं, सब उनको थोड़ा बहुत समझते हैं, सब उनको थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो ये चीजें इस रूप से बहुत आगे निकल चुकी हैं कि ये किसी चीज की तरफ लिमिटेड हो, ये अब अनलिमिटेड टेक्नोलॉजीज बन गई हैं। अब हम जब इनके बारे में बात करते हैं तो अब हम इनको थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं, हम इनकी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो मेरी जो रिसर्च है यूनिडीर में, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्ममेंट रिसर्च, जेंडर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है। और ये तीनों पे अलग अलग नहीं, तीनों के इंटरसेक्शंस, तीनों को साथ में देख के उन पे फोकस करती है। तो जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, उसमें जेंडर का कहाँ पे मेंशन रहता है, वो कैसे यूज होता है, कहाँ पे जेंडर को ठीक से नहीं देखा जा रहा है और कहाँ पे वो जेंडर गैप्स आ रहे हैं, ये वाली रिसर्च मैं यूनिडीन में करती हूँ। रिसर्च का एक बहुत बड़ा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल एआई के बारे में इतनी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, और जितनी सिविलियन साइड पे एआई जितना अप्लाई हो रहा है, उससे ज़्यादा मिलिट्री साइड पे अप्लाई हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री में वेपन्स में हो या फिर सिस्टम्स में हो, बैक एंड पे हो, कहीं पे भी हो। इस यूज को जेंडर लेंस से देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि जब ये टेक्नोलॉजीज कहीं यूज हो तो उसकी वजह से महिलाओं पे या फिर बच्चों पे या फिर किसी भी और जेंडर के लोगों पे कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स हों किसी भी तरह से।
जो फिलहाल स्थिति है, जेंडर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करने की जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है उसको पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में उसको शामिल करने की, वो फिलहाल कैसी स्थिति है? आर्म्स कंट्रोल है, डिसआर्ममेंट है, उसमें महिलाओं का बाहर रहना उस पॉलिसी मेकिंग से किस तरह से उस पर असर डालता है, थोड़ा इस बारे में बताइए।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि यही चीज़ हम यूनिटी में भी करते हैं। हम जेंडर को दो तरह से अप्रोच करते हैं, एक है पार्टिसिपेटरी पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं को अंदर होना चाहिए पॉलिसी प्रोसेसेस में, जहाँ पे जब ये नीति निर्माण के बारे में बातें हम करते हैं, वहाँ पे उन रूम्स में महिलाओं को होना चाहिए और भी अदर जेंडर्स को होना चाहिए, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो भी इसमें कैप्चर हो सके। तो एक ये होता है पार्टिसिपेटरी पर्सपेक्टिव। दूसरा हम बात करते हैं सब्सटेंटिव पर्सपेक्टिव के बारे में, जहाँ पे हम ज़्यादा ये बात करते हैं कि इन टेक्नोलॉजी से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं महिलाओं के ऊपर या फिर अदर जेंडर्स के ऊपर, और उसको हम फिर कैसे हटा सकते हैं या कैसे लिमिट कर सकते हैं किसी प्रकार से। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स सबसे ज़्यादा हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ वेपन्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम और स्पेसिफिकली इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में महिलाएं सिर्फ 25% हैं, तो बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी एप्स वगैरह या टेक्नोलॉजीज जो निकल के आती हैं उस फील्ड से, वो जेंडर बायस्ड होती हैं या फिर ऐसी होती हैं कि वो जेंडर सेंसिटिव नहीं होती है। जैसे कि आप स्टॉकरवेयर देख लीजिए, स्टॉकरवेयर कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे आप किसी इंसान की ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे ये मैप्स के थ्रू हो, चाहे ये कैमरास के थ्रू हो, किसी भी प्रकार से हो, उसे स्टॉकरवेयर कहते हैं। और स्टॉकरवेयर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर इस्तेमाल होता है, और ये इसलिए होता है बिकॉज़ जब ये टेक्नोलॉजीज डिजाइन हो रही होती हैं उस टाइम पे अगर महिलाओं का इनपुट नहीं लिया जाए या उनसे नहीं पूछा जाए कि अच्छा आपको क्या लगता है इसमें और क्या हम बढ़ा सकते हैं या और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं? तो ये टेक्नोलॉजीज में ये वाला ऐसा बायस आ जाता है जेंडर के बेसिस पे, जो सिर्फ उसकी आउटपुट स्टेज पे फिर हमें दिखाई देता है जब वो ऑलरेडी किसी गलत प्रकार से यूज हो जाती है उसके बाद। तो हम इनके पार्टिसिपेटरी और सब्सटेंटिव पर्सपेक्टिव्स की इंटरसेक्शन को भी देखते हैं इस रिसर्च के थ्रू।
ये तो रही बात महिलाओं का इंक्लूजन करने की, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, तो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि जो सबसे ज्यादा उस पर यूज हो रहा है वो शायद वेपनाइजेशन में भी हो रहा है, या वो तेज गति से हो रहा है। तो ये जो वेपनाइजेशन है या मिलिटराइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या है?
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरू में जैसे इसका इसका आमंत्रण हुआ है वो सिविलियन स्पेस में नहीं हुआ है, वो मिलिट्री स्पेस से हुआ है। डार्पा नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है US में, और आप डार्पा को उस तरह से भी जानते होंगे कि डार्पा ने इंटरनेट बनाया था 1960s में। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री AI पे भी काफ़ी रिसर्च करी हुई है और मिलिट्री के थ्रू फिर AI सिविलियन स्पेस में पहुंचा है। अब थोड़ी सी ये जो थोड़ा सा जो स्टेटस है AI डेवलपमेंट का वो थोड़ा चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सिविलियन स्पेस में AI की इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन सेम चीज़ें और उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें भी मिलिट्री AI में भी देखी जा रही हैं, जैसे कि अनक्रूड व्हीकल्स हम देखते हैं, अनक्रूड एरियल व्हीकल्स हो गए या अनक्रूड ग्राउंड व्हीकल्स हो गए, अनक्रूड मरीन व्हीकल्स हो गए। तो ये अनक्रूड व्हीकल्स बेसिकली उस प्रकार के वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसके लिए किसी इंसान को ना उस वेपन पे होना होता है, ना उस वेपन को देखना होता है, ना उसे कंट्रोल करना होता है। वो व्हीकल या वो वेपन सिस्टम या वो सिस्टम या ड्रोन हो या कुछ भी हो, वो अपने आप से टारगेट कर सकता है और अपने आप से टारगेट को एंगेज भी कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स हम काफी देख रहे हैं आजकल, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ये काफी ऑब्जर्व हुए हैं इनका यूज, तो वो भी हम देख चुके हैं। उसके अलावा ये तो बहुत ही बैटलफील्ड ओरिएंटेड चीज है, लेकिन उसके पीछे भी जो हम मिलिट्री साइड पे देखते हैं जैसे कि सिस्टम्स हैं, जैसे कि लॉजिस्टिकल सिस्टम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, उसमें भी AI इतना ज्यादा आजकल यूज हो रहा है कि ह्यूमन ह्यूमन ओवरसाइट नहीं है उन चीजों की, यानी कि एक कोई इंसान नहीं है जो जाके देख सकता है कि अच्छा ये ठीक चल रहा है, ये नहीं ठीक चल रहा है, इसको ठीक करना होगा। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हम बायसेस के लिए बातें करते हैं या गलत इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोसेसिंग की बातें करते हैं वो सब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई इंसान वहां नहीं है उसको देखने के लिए। यही सेम चीज सिविलियन AI में काफी बार देख चुके हैं, जैसे कि एप्पल का क्रेडिट कार्ड सिस्टम एक आया था 2019 में, जिसमें लगातार महिलाओं को कम क्रेडिट रेटिंग्स दी जा रही थी, और फिर वापस जाके जब उन्होंने देखा कि ये क्यों हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि वो महिलाएं हैं, और कोई रीजन नहीं था, ना उनकी क्रेडिट हिस्ट्रीज में कोई डिफरेंस था उनके मेल काउंटर पार्ट से, या फिर और भी कहीं पे कुछ डिफरेंस नहीं था। द ओनली डिफरेंस वॉज कि वो महिलाएं हैं, तो उसकी वजह से उनको कम क्रेडिट रेटिंग्स मिल रही थी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने AI में सिविलियन स्पेस में बहुत ऑब्जर्व करे हैं, और अब सेम चीजें हम थोड़ा मिलिट्री AI में भी देख रहे हैं। तो UN में मीटिंग्स होती हैं CCW/GGE ऑन लीथल ऑटोनोमस वेपन्स की, हर साल ये मीटिंग्स होती हैं दो या तीन बार, और इस मीटिंग में डिस्कस होता है कि मिलिट्री AI के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे इम्प्लॉय हो रही हैं मिलिट्री स्पेसेस में, और उनको पॉलिसी की तरफ से हम कैसे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो ठीक से चल रहे हैं, कि वो ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं हो रहे हैं, कि कुछ ऐसी अगर टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं, जैसे कि वो टेक्नोलॉजीज जहाँ पे कोई ह्यूमन ऑपरेटर नहीं है जो उनको ओवरसी कर रहा है, वो टाइप की टेक्नोलॉजीज ना डेवलप हो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेपनाइजेशन से परेशानी हो रही है, और रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी एप्पल की आपने पेमेंट ऐप बताई उससे भी दिक्कत हो रही है। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या कौन से सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि ये जो चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, उन्हें दूर कर सकें?
ये कॉन्वर्सेशंस UN में करीबन 10 साल से चल रही हैं कि हम मिलिट्री AI को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में परेशानी ये है कि जैसे ही आपको समझ आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उस दौरान वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है। अगर आपको 2019 में समझ आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो 2024 तक आते हुए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पूरी बदल चुकी है। आजकल हम चैट जीपीटी की काफी बात करते हैं, चैट जीपीटी 2022 से पहले किसी को पता भी नहीं था क्या है। और आज हम अगर एआई के बारे में बात करते हैं, तो सबसे नंबर वन चीज जो हम बात करते हैं वो चैट जीपीटी है। हमेशा से परेशानी यही रही है कि उसका टर्नओवर रेट इतना हाई है कि हर टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है, वो जैसे ही डेवलप होते ही है उसकी उससे थोड़ी देर बाद वो आउटडेट हो जाती है। तो जब तक पॉलिसी सर्कल्स को समझ भी आता है कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक वो टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है। तो इसलिए अब थोड़ा अप्रोच डिफरेंट हो रहा है। अब हम यूएन में ये बातें चल रही है कि शायद हमें डेफिनेशन से आगे जाना चाहिए, शायद हमें इस टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शायद हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी चाहिए और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फिर ये डिसाइड करना चाहिए कि हम इसको कैसे पॉलिसी के अंदर लेके आए। जो भी उस प्रकार से वेपन डेवलप होगा, उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, इस वेपन सिस्टम में कोई ऑपरेटर नहीं है या इस वेपन सिस्टम में थोड़ा बहुत ह्यूमन ओवरसाइट है, पूरा ह्यूमन ओवरसाइट नहीं है, या ये वेपन सिस्टम जो है वो खुद से टारगेट कर सकता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी वेपन सिस्टम में हो, चाहे वो 2019 में डेवलप हो चाहे वो 2029 में डेवलप हो, उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम पॉलिसी के अंदर लाएं, उनको हम रेगुलेट करें। सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अब सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के, उन्होंने इस मीटिंग जो मैंने अभी मेंशन करी थी, CCWGG ऑन लॉज, उसको 2026 तक की डेडलाइन दी है कि 2026 तक आप एक कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या डिक्लेरेशन या कोई नॉर्मेटिव एंड ऑपरेशनल फंक्शनल टूल जो है वो लेके आने गवर्नेंस के लिए मिलिट्री एआई के बारे में। तो उस हिसाब से अब इस डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये CCWGG वाली जो डिस्कशंस हैं वो अब से लेके 2026 तक और ज्यादा सब्सटेंटिव फॉर्मेट में कन्वीन होंगी, जिससे लोगों को थोड़ा और आइडिया हो कि कैसे हम इसके बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं कि हम एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन पे या किसी पॉलिटिकल आउटपुट पे निकल के आए 2026 तक।